واستبق الباب، اور وہ دونوں بڑھے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ، اور اس عورت نے پھاڑ دیا اس کی قمیص کو، من دبری، پیچھے سے. اب کیا ہوا، جب یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور وہ ظاہر ہے یہ اس کام میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، تو وہ بھاگے وہاں سے. اور یہیں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب کوئی گناہ کی جگہ ہوتی ہے اور انسان کو یہ خطرہ ہو کہ میں یہاں پہ، یہ نہ ہو کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، وہاں سے نکل جانا چاہیے. یہ نہیں کہ بیٹھے بھی رہیں اور کہتے رہیں کہ اچھا اب کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں. کیوں آپ اٹھ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو وہ چلے نہیں گئے، وہ بھاگے. اس سے پتا چلتا ہے ان کا گناہ سے خود کو بچانے کے لیے جو ایفرٹ ہے ان کی، کہ کہیں میں اس میں نہ پڑ جاؤں. اب آپ دیکھیں نا، انبیاء کی عصمت کو سمجھیں کہ کیسے وہ سبحان اللہ ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ کسی ایسے ہی نہیں چن لیتا. کیسے ان کی تڑپ تھی اس چیز کی کہ میں نے گناہ میں نہیں پڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا، اس دن لوگ کس طرح تڑپ رہے ہوں گے گرمی میں، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ایک وہ جو مسلمان عادل بادشاہ ہے، دوسرا وہ جوان مرد اور عورت، لڑکی لڑکا جوان، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. جوانی میں تو ہم سوچتے ہیں ابھی تو فن ٹائم ہے، اب بڑھاپے میں جا کے کریں گے توبہ تب نیک ہو جائیں گے، ابھی تو میری جوانی ہے. جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی. نمبر تھری وہ جو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جب مسجد سے نکلے مسجد کی دھن میں رہے. نمبر فور وہ دو لوگ جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پہ جمع ہوتے ہیں، اسی پہ جدا ہوتے ہیں. نمبر فائیو وہ جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس کو چھپا کے دیتا ہے، ایسے کہ دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی. نمبر سکس وہ جس کو کوئی جاہ اور منصب والی، حسن و جمال والی عورت اپنی طرف برائی کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. نمبر سیون وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. تنہائی میں ہے نا، کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ آنسو بھی خالص ہیں. ان آنسوؤں میں کوئی فریب نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریا نہیں، اکیلا ہے وہ. اور اس کو اللہ یاد آ گیا، اپنے گناہ یاد آ گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد آ گیا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. تو اس میں ہے وہ شخص انکلوڈڈ جس کو کوئی حسن و جمال والی ایسی خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے تو وہ کہے کہ کس کو کون سا کچھ پتا چلنا ہے، تو کوئی بات نہیں. ٹیکسٹنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں تو کچھ زیادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک بات چلی جاتی. جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جو گناہوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، وہ سو میں بھی نہیں پڑتے، چھوٹے گناہ میں بھی نہیں پڑتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ راستہ جو آگے زنا تک لے جاتا ہے وہاں قدم نہ رکھنا. یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرنا، قریب بھی نہ جانا، دور سے ہی اس کو خدا حافظ. تو انہوں نے وہاں سے فرار حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائی. اب سمجھ آئی کہ گناہ سے بچنے کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے. میں اور آپ بتائیں کہ ہم گناہ سے بچنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، کتنا اس چیز کو سوچتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ نہیں بیٹھنا اس لیے کہ یہاں پہ میں گناہ سے کہ میں پڑھ سکتی ہوں، یہاں پہ کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ میں کوئی غلطی کر سکتی ہوں. شاید ہم کانفیڈنٹ بہت ہوتے ہیں اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس ہم کیسے گناہ کریں گے، ہم تو بڑے نیک اور پارسا ہیں، ہم تو کبھی گناہ میں نہیں پڑ سکتے. देखें आपकी यहां से हमने ये सीखा कि जहां गुनाह में पड़ने का खतरा हो वहां से हमने दौड़ लगानी है, हमने वहां पे नहीं रहना है। अच्छा अब देखें, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई तो पीछे वो औरत भी भागी, मतलब उसके अंदर इतनी जुर्रत थी कि वो बजाय इस बात पे शर्मिंदा हो जाती कि इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने भी पीछे दौड़ लगाई। देखिए दो अल्फाज से ही पता चल गया ना कि वहां सिचुएशन क्या थी, कि दोनों भागे, एक किस लिए भाग रहा है, शर की तरफ बुलाने के लिए, और एक किस लिए भाग रहा है, शर से दूर जाने के लिए। एक जिद पे है कि मैंने गुनाह करके रहना है, और एक है जो अल्लाह की पनाह ले चुका है। अब आप खुद सोचें आगे क्या, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि दरवाजे तो इसने लॉक किए हैं, फिर क्यों फरार हो रहे हैं, आराम से बैठ जाएं भाई, दरवाजा तो वैसे ही लॉक है तो मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, इसमें इतना बड़ा लेसन है कि देखें, चाहे आपको पता है कि कोई रास्ता नहीं है बचने का गुनाह से, तब भी कोशिश करनी है। कोशिश की थी ना, एक दौड़ लगाई थी बीबी हाजरा ने भी, क्या एक दफा नहीं पता चल गया था कि पानी नहीं है इर्द गिर्द, क्यों सांप चक्कर लगाए, कोशिश कोशिश कोशिश, एक दफा नहीं, दो दफा, तीन दफा, अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को देखता है, ये कितनी कोशिश कर रहा है, इसको पता है कि नहीं है कोई निकलने का रास्ता, फिर भी वो कोशिश कर रहा है, फिर भी वो भागे, क्योंकि हमारा काम कोशिश करना है, बचाना अल्लाह का काम है। हम कहें हम क्या कर सकते हैं, हम तो जा ही नहीं सकते, हम तो वो बुरा मानेगा, वो ऐसे करेगा, इससे मतलब हमारी अपनी कोशिशों में कमी होती है ना, हम निकलना ही नहीं चाहते ऐसी जगहों से, ऐसे ऐसे रास्तों को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे हैं और आगे दरवाजे बंद हैं, वो औरत भी पीछे भागी है, उसने वो जानती थी कि दरवाजा बंद है, वो भी अपने तौर पे कोशिश कर रही है। इसको ना आप सब चीजों में लगा सकते हैं, आप ये देख लें कि आपको अगर ये कि देखें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे तो फलां नहीं मानते, फलां नहीं मानते, मेरे बॉस नहीं मानते, हस्बैंड नहीं मानते, बच्चे नहीं मानते, आपकी कोशिश कितनी है गुनाह से बचने की, आप कितना अपने तौर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ताकत खर्च कर दी, वस्तबकल बाब, पूरी ताकत के साथ दौड़े हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, औरत भी जब दौड़ी है तो उसने पीछे से जो पकड़ा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर चाहे पीछे से पकड़ा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम रुक जाते तो तब भी ना कुर्ता फटता, मगर वकद्दत कमीसहू बता रहा है ये बात कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे को जोर लगा रहे हैं और वो पीछे को जोर लगा रही है, वो अपनी तरफ खींच रही है और यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे हैं, कितना पक्का इरादा था। इसे ही पता, एक बात तफासीर में लिखी है कि एक बुजुर्ग आलिम थे, वो जेल में थे, जेल में कैद थे, तो जुमे के दिन अपनी कुदरत के मुताबिक गुसल करते, अपने कपड़े धोते, फिर जुमे के लिए तैयार होके जेल खाने के दरवाजे तक जाते थे, वहां पहुंच के कहते थे या अल्लाह मेरी कुदरत में बस इतना ही था, आगे आ तेरा इख्तियार है, ठीक है ना। और दरवाजा तो जाहिर है जेल का नहीं खुलता था, मगर वो अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत, अपनी जहां तक उनकी लास्ट, जहां तक लास्ट स्टेप वो ले सकते थे, हर जुमे को वो ये अमल करते थे, समझाई बात। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पूरी कोशिश कर ली कि वो पीछे से कुर्ता पकड़ रही है, वो फिर भी रुक नहीं रहे, फिर भी वो आगे को भागते, और उसकी भी ग्रिप कितनी मजबूत है कि कुर्ता फट गया ना, उसने छोड़ा ना इन्होंने जोर लगाना छोड़ा। और इस किस्म की स्ट्रगल हम रोजाना करते हैं एक अनदेखे दुश्मन के साथ जो शैतान है, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। हम भी अगर जोर लगा के खुद को उससे नहीं छुड़ाएंगे तो हम भी गुनाह में पड़ जाएंगे। अब जिसका जोर ज्यादा होगा जीत उसी की होगी। शैतान तो पीछे नहीं हटता, वो तो खींचता ही जाता है। मुझे और आपको इतना जोर लगाना होता है कि हम अपने आप को उसके चुंगल से आजाद कर लें। तो इस कश्मकश, ये खैर और शर की जो कश्मकश है, इसमें रोजाना हर इंसान पड़ता है। और यहां पर तो अपने सामने देख रहे थे एक हसीन औरत, एक तैयार औरत, खुशबुओं में लिपटी हुई औरत, हालात मुआफिक, सब कुछ। यहां तो और मुश्किल था। अब वो दरवाजे के पास पहुंच गए कि क्या हुआ, वह अल्फा या सईदा लदल बाब। एकदम सामने क्या हुआ, दरवाजा खुला और उसका शौहर सामने खड़ा हुआ था। अनएक्सपेक्टेड, उसने कभी सोचा नहीं था कि इस टाइम पे वो आ सकता है। और यहां पे इंटरेस्टिंग बात है कि ज़ौजहा नहीं कहा गया, सईदहा। सईदा वो कहा जाता, फिर भी समझ आती थी कि उनका मालिक जो आका यूसुफ अलैहिस्सलाम का, लेकिन सईदा हा की जमीर मोनस की होती है। सैयद तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का था क्योंकि उनका आका था ना, और हा की जमीर आई जो मोनस की है। तो औरत का आका एक शौहर नहीं कहा गया, औरत का सरदार। तो इसमें बड़ा एक गहरा नुक्ता है। औरत ने अपने सैयद को पाया, ये इशारा इस तरफ है कि बावजूद ये कि वो आदमी इसका आका था, जिसका इकराम इस औरत को करना चाहिए था, जिसकी इज्जत का पास इसको रखना चाहिए था, क्योंकि वो सरदार था इसका, उल्टा इसने क्या किया, उसी की इज्जत को दागदार कर दिया। तो इसमें इशारों में समझाया जा रहा है, और ये लफ्ज समझा रहा है कि इस औरत ने कितना बुरा अमल किया कि अपने ही सैयद की इज्जत को तार तार किया, अपने ही शौहर के साथ ऐसा किया, उसकी इज्जत में खयानत की। जबकि इसके जिम्मे तो ये था कि अपने शौहर के घर, उसके माल, उसकी इज्जत की हिफाजत करे जब वो घर पे ना हो। तो औरत जब अपनी इज्जत की हिफाजत करती तो अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करती। हदीस आपको पता होगा, वो औरत जो नमाजें कायम करती है 5 वक्त की, और माह रमजान के रोजे रखती है, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है। क्या होती है शर्मगाह की हिफाजत? ये नहीं सिर्फ है कि जिना नहीं करती, फ्लर्ट नहीं करती, किसी से छुपी दोस्तियां नहीं करती, ताल्लुकात नहीं रखती, अपने खाविंद की इज्जत की हिफाजत करती है और अपने खाविंद की इताअत करती है। तो इससे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। कितने ईजी है औरतों के लिए, कितना ईजी है कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। और बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, कुरान सीख भी रही हैं, इस क्लास में भी हैं, अच्छी इबादत भी करती हैं, पढ़ती भी अच्छा है, मगर खावंदों को सताती हैं, उनसे बदतमीजियां करती हैं, सबके साथ अच्छी हैं, खावंद के साथ बात करते वैसे बात करती हैं जैसे नौकर से बात कर रहे हैं। तो फिर हम क्या सीख रहे हैं? बहुत से आदमी हैं जो मुझे ईमेल भी करते हैं, या कहीं ना कहीं से मैसेज सेंड कराते हैं, किसी ना किसी के थ्रू मुझ तक पहुंचते हैं कि आप इनको क्या पढ़ा रही हैं, ये तो इस तरह का सलूक करती हैं घर में। और यकीन करें मेरा खुद सर शर्म से झुक जाता है कि मेरे स्टूडेंट्स होके ऐसा करती हैं, जबकि मैं तो आपको समझाती रहती हूं, आप सब मेरे बच्चों की तरह हैं। जैसे खुदा ना खासा मेरे बच्चों की शिकायत कोई मुझ तक लेकर आए तो मुझे शर्मिंदगी होगी ना, इसी तरह आपकी भी कोई शिकायत मुझ तक लेकर आता है तो मुझे इसी तरह लगता है, चाहे मैं पर्सनली आपको नहीं भी जानती। मगर जब कोई कहता है आपकी स्टूडेंट वो है मेरी बीवी और वो घर में ऐसा ऐसा करती है, तो खुद तो आप गुनाहगार होती हैं, साथ मुझे भी शर्मिंदा करती हैं। अब कुरान में देख लें, यहां शौहर को सैयद कहा गया, दूसरी जगह हम पढ़ चुके हैं कवाम कहा गया। तो अल्लाह ताला ने ये दर्जा आदमी को दिया, अल्लाह ताला के दिए हुए मकाम को हम अपने पैरों तले रोंदे, उसकी इज्जत भी ना करें, इतनी भी इज्जत ना दें जितनी अपने दोस्तों को देती, उनसे जैसे नरमी और हंस हंस के बात करते हैं, सोचें अल्लाह के दिए हुए दर्जे को हम इतनी भी अहमियत नहीं देते। ये पास है हमें अल्लाह की बात का, क्योंकि हदीस में है फसवालेहातु कौन, नहीं कुरान में है फसवालेहातु कौन इतातुन, फरमा बरदार होती हैं, हाफिजातुन लिल गैब। और इतात, इतात हदीस में आता है, देखें इस हदीस में जो मैंने आपको सुनाई है, आज इतात तो दूर की बात है, अगर नौकर जैसा सलूक करना है हस्बैंड के साथ तो ये क्या सीखा हमने। सब ऐसे नहीं है, मगर जो करते हैं वो उनको खुद समझ जाना चाहिए, इंसान अपना हिसाब लेने के लिए खुद काफी है। आज हिसाब नहीं लेंगे तो कल को अल्लाह ताला के सामने तो हिसाब देना होगा। आज तो शायद कोई हमें घर में आके देखे भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होगा कि किस तरह से हम बात करते हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो कोई नहीं देख रहा था, अल्लाह देख रहा था। और यही तकवा है कि अल्लाह ताला की नजरों का एहसास हो कि मैं ये जो कर रही हूं सही नहीं कर रही। किस तरह जवाब देंगे इस बात का कयामत के दिन, शौहर के मकाम मामूली नहीं है, चाहे वो बाहर दुनिया में कोई मामूली आदमी हो, उसका कोई दर्जा भी ना हो, मगर जब वो शौहर बन गया किसी का तो उस औरत के ऊपर उसका बड़ा मकाम है, उसकी बात को मानना जरूरी है, अनलेस कि वो कोई सी ऐसी बात का हुक्म देता है जो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की हो, तब नहीं मानेंगे। तो उन दोनों ने पाया उसके शौहर को दरवाजे के पास, अब बजाय इसके कि वो औरत शर्मिंदा हो जाती, उसने क्या किया, कालत, उसने फौरन डिटाई से कहने लगी, मा जजाउ मन अरादा बि अहलिका, क्या बदला है उस बंदे का जो इरादा करे आपकी घरवाली के साथ, किस चीज का, सुअन, बुराई का, इल्ला मगर अन युसजना औ अज़ाबुन अलीम, इल्ला ये सिवाय इसके और क्या बदला हो सकता है ऐसे आदमी का जो आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे, कि उसको तो जेल होनी चाहिए या उसको दर्दनाक अजाब टॉर्चर होना चाहिए। यानी उल्टा चोर को तवाल को डांटे वाली बात, कि खुद ही करके और दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल दिया। और इसी से पता चलता है कि उसकी कोई मोहब्बत ऐसी सच्ची मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि जहां पे इंसान को सच्ची मोहब्बत हो ना किसी के साथ, तो वो अपने महबूब की कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये कह रही है कि उसको जेल में डाला जाए। अब इसके अंदर उसने अपने ऊपर से कसूर तो उतारना था ही, वो भी मकसद था, और अपना गुस्सा भी इसमें शामिल था, दर्दनाक अजाब इसको दिया जाए कि इसने मुझे नो क्यों किया। उसको खुद गैरत आई। और ये भी उसने कहा जिसने इरादा किया तेरे घर वाले के साथ, ये नहीं कहा जिसने कर लिया तेरे घर वाले के साथ कोई बुरा, इसलिए कि अगर ये कहती तो फिर तो खुद के ऊपर भी आना था कि मैंने मेरे साथ किसी ने ऐसा कर लिया। तो आप देखें, एक मासूम के ऊपर तोहमत लगाना, जैसे कि आपको पता होगा कि 7 कबीरा गुनाह जो हलाक कर देने वाले गुनाह है, उनमें एक गुनाह है भोली भाली मासूम औरत पे तोहमत लगाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आदमियों के ऊपर कोई तोहमत लगाते भी जाए तो कोई मसला नहीं, ये नहीं मतलब है, वो भी गुनाह है। औरत के ऊपर कबीरा गुनाह इसलिए कहा गया कि औरत का एक दफा उसके ऊपर कुछ इल्जाम लग जाए ना तो उसकी सारी जिंदगी खत्म होकर रह जाती है, और उसको कोई चारा नहीं होता किस तरह से अपने ऊपर से इल्जाम को धोए। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिसाल आप देख लें, कैसे उनके ऊपर तोहमत लगाई गई थी, और कितनी उनके लिए एक बेबसी का आलम था। तो चाहे औरत पे तुहमत लगाना या मर्द पे तुहमत लगाना गुनाह का काम है। हमारे यहाँ किसी भी लड़की पे, वो रिश्तेदारों में हो, मोहल्ले में हो, इर्द गिर्द हो, हमारी नजरों में आ जाए सही, बड़े आराम से उसके ऊपर कोई भी बात लगा देते हैं। जी ये फलां लड़के के साथ इन्वॉल्व है, इसका तो चक्कर है फलां के साथ, और ये कह के खुद आराम से घर जाके बैठ जाते हैं। ये नहीं हम सोचते कि ये कितना बड़ा हलाक कर देने वाला गुनाह है। तो किसी के भी कैरेक्टर के बारे में जुबान खोलने से पहले इंसान 100 दफा नहीं, हजारों दफा सोचे, और तभी कहे जब कोई वाकई आपको बड़ी कोई गवाही देनी है, वरना जरूरत क्या है। तो किसी मर्द पे भी बेकसूर है, कोई आपके पास उसका सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके ऊपर इल्जाम लगा देना जैसे यहां पे इसने तोहमत लगाई है, ये वो चीज है जो किसी की रेपुटेशन को तबाह करके रख देने वाली है। तो यहां पे इस औरत ने कह दिया कि इसने मेरे साथ गुनाह का इरादा किया। और आज देखें आप, फिर अगेन सियासतदानों की बात आ जाती है, या फिर और जो लोग बहुत पॉपुलर होते हैं, आप देखते हैं खासतौर पे इस मुल्क में, तो अक्सर वो कोई औरत निकल के आ जाती है और वो कहती है इसने मेरे साथ ये किया था। हो सकता है किया भी हो, लेकिन बहुत सारी औरतें जब कोई कोई ऐसा कोई टाइम आता है, कोई इलेक्शन का टाइम है या कोई बहुत अहम टाइम आया, तो उनको फिर याद आ जाता है कि अब हम यानी हमारे साथ कुछ मसला हुआ था। तो ये सख्त गुनाह है अगर किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जाए। तो इस औरत ने देखें कहां से शुरू किया, एक गुनाह का इरादा किया था ना, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंसान एक गुनाह करता है और उससे गुनाह के दरवाजे खुल जाते हैं, और इसने भी एक गुनाह का इरादा किया था, मगर कैसे उसके बाद फिर जाहिर है अब झूठ भी बोलना पड़ा, धोखा भी दिया अपने शौहर को, खयानत भी की अपने शौहर की, और तोहमत भी लगाई, किसी की रेपुटेशन भी तबाह करने की कोशिश की, बहुत सारे गुनाहों में पड़ गई, बहुत सारे गुनाह। तो एक गुनाह कभी एक नहीं रहता, शैतान एक ही कह के करवाता है, कोई बात नहीं एक ही गुनाह है ना, कोई बात नहीं एक ही बात है, बार है ना, मैंने कौन सा रोज रोज करना है। अच्छा अब गलती हो जाए इंसान से तो होना क्या चाहिए, इंसान को शर्मिंदा होना चाहिए और तौबा करनी चाहिए, मगर यहां पे कोई तौबा की तो बात है ही नहीं, उल्टा दूसरे पे इल्जाम। और यही आप उठा के देख लें, इबलीस ने भी तो यही किया था, कहानी जहां से शुरू हुई इंसानियत की तो वो इसी से तो शुरू हुई कि इबलीस ने कहा था मेरी थोड़ी कोई गलती है, अल्लाह तेरा कसूर है, तूने क्यों मुझे सजदा करने का हुक्म दिया। तो इबलीसी रवैया यही होता है, इबलीसी तरीका यही होता है कि इंसान अपनी गलती कभी नहीं मानता, वो कहता है आपका ही कसूर है, आपने मुझसे ये करवाया, आपने ऐसा किया था तो ये हुआ था, मेरा क्या कसूर। बहुत कभी अमल है, इसने भी बजाय अपने ऊपर देखने के कि मैंने गलती की है, उल्टा इल्जाम दूसरे पे। अब ये देखें ये कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए कि किसी औरत, कोई भी आम औरत भी कह दे ना कि कोई आदमी है उसने मेरे साथ ऐसे करने की कोशिश की, मसला ने मुझे रेप करने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कहां ये कि गुलाम अपनी मालकन पे हाथ डालता, आपको पता है जाहिलियत में भी ऐसा नहीं होता था, कभी गुलाम जुर्रत ही नहीं कर सकते थे, वो इतने पिसे हुए होते थे, इतने डाउन होते थे ना माशरे में, कि वो कभी सोच ही नहीं सकते थे अपनी मालकन के ऊपर ऐसी बात करने का, जाहिलियत में भी। और कभी नहीं आप कोई वाक्या ऐसा सुनेंगे या पूरी ये तारीख इस्लामी में भी कहीं मक्का में मदीना में, कि गुलाम ने किसी ने ऐसा कर दिया, गुलाम ने अपने आका को कत्ल कर दिया मालकन के साथ ऐसा, आखिर इतने गुलाम थे कभी आपने सुना नहीं। तो गुलाम बेचारे उतने ऐसे उनको दिमागी तौर पे मफलूज कर दिया जाता था, वो कभी सोच ही नहीं सकते थे ऐसी बात। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं थी। قال. اس پہ یوسف علیہ السلام اپنے دفاع کے لیے بول پڑے، ہی راودتنی عن نفسی، یہ ہے جو پسلانا چاہتی تھی، یہ ہے جو مجھے سیڈیوس کر رہی تھی. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ انسان کی عزت پہ جب کوئی الزام آ رہا ہو تو اس کو موقع ملے اور وہ بولے، یہ نہیں کہ اس وقت خاموش رہیں، ہم تو کچھ کہتے نہیں، ہم تو بس خاموش رہیں گے، نہیں، بولے اس وقت. خاص طور پہ عزت کا جب جہاں پہ معاملہ ہو اور کیریکٹر کی بات آئے. آگے آپ دیکھیں گے جب وہ بادشاہ بن جاتے ہیں تو ان کے بھائی بھی الزام دیتے ہیں لیکن اس وقت وہ خاموش رہتے ہیں، مگر یہاں پہ خاموش نہیں رہے، وہ بات ہی الگ ہے. اور شاہد شاہد من اہلیہ، اور ایک گواہ دینے والے نے گواہی دی اس کے اہل میں سے. اب بڑی بڑی مشکل سچویشن آ گئی نا، اس لیے کہ اب کریں تو کریں کیا، ظاہری بات ہے اس کو تھوڑی غیب کا علم ہے کہ بھائی ہوا کیا تھا، وہ کس کی بات پہ یقین کرے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا، وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے کیا. تو اب عزیز مصر بڑی کنفیوژن میں آ گیا. ہو سکتا ہے کوئی مشورہ کیا ہو کسی سے یا کچھ ہے. تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی اس کے گھر میں سے، یعنی اس نے ایک پلان دیا، اس نے ایک مشورہ دیا، اس نے ایک بات کو کا سلوشن دیا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کیوں ایسا نہیں ہوا کہ عزیز مصر فوراً اپنی بیوی پہ یقین کر لیتا اور کہتا کہ تم ہی غلط ہوگے، تمہاری اتنی جرت، جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً عورت کی بات سنی اور فوراً غصے میں آ گئے اور فوراً گالی گلوچ اور ہاتھا پائی شروع کر دی، ایسے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر تو اس کے بھی سامنے تھا نا، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام پلے بڑے تھے اس گھر میں، وہ اتنا تو جانتا تھا کہ یہ کیسے انسان ہے، اتنا تو پتہ چل جاتا ہے. تو اب اس نے، اس لیے اس کو اتنی کنفیوژن ہوئی کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو ایک گواہ نے کیا کہا، اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر قمیص پھاڑی گئی ہے سامنے سے تو یہ سچی ہے، صدقت ہے نا تا ساکن، عورت سچی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا یا اس کو اپروچ کیا یا اس کی طرف بڑھا تو عورت ظاہر ہے ریزسٹ کر رہی تھی، تو سامنے سے قمیص پھٹے گی اور اس کو دور کر رہی ہے. وہ ہوا من الکاذبین، اور یہ آدمی پھر جھوٹا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ کون تھا جس نے یہ کہا، بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ ایک بچہ بول پڑا تھا، اور اس میں حدیث بھی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ چار بچے پنگوڑے میں بولے تھے، ان میں ایک تو جریت پہ جو جس نے الزام لگایا تھا اس کا بچہ تھا، آپ نے سنی ہوگی یہ بات، پھر ایک فرعون کی جو ہیئر ڈریسر تھی اس کا بچہ تھا یا بچی تھی جس نے کہا تھا کہ ماں تو حق پہ ہے اور تو کود جا اس میں، تو اور ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے جو پنگوڑے میں بولے تھے، اور چوتھا بچہ یوسف علیہ السلام کا یہ شاہد تھا. تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضعیف حدیث ہے، یہ صرف ابن عباس کا قول ہے، کیونکہ بخاری کی حدیث میں تین بچوں کے بولنے کا ہی صرف ذکر آیا. تو دوسری جگہ تفاسیر میں کہ یہ کوئی رشتہ دار تھا، ہو سکتا ہے اس عورت کا کوئی رشتہ دار تھا جس نے یہ بات کہی، جو کوئی سمجھدار تھا اور اس نے بڑی انصاف کی بات کہی، اس لیے اس کو شاہد کہا گیا. وہ دیکھنے والا تو نہیں تھا کہ کھوڑا دیکھ رہا تھا، اس لیے کہا گیا، اگر اس نے ایک انصاف کی بات بتائی، ایک پلان بتایا، ٹھیک ہے. اور اس نے کہا وہ ان کانا قمیصہ قد من دبر، اور اگر قمیص پھٹی ہوئی ہے، پھاڑی گئی ہے پچھلی طرف سے، فکذبت، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وہ من الصادقین، اور وہ سچوں میں سے، ظاہر ہے اس کا مطلب ہے پیچھے سے تو نہیں، اگر عورت کی طرف اپروچ یہ کر رہا تھا تو پیچھے سے کیسے قمیص پھٹ گئی، پھر وہ تو یہ کہ یہ بھاگا ہے تو پیچھے سے ایسا ہوا. ابھی دروازے پہ بھی اس نے دیکھا ہوگا کہ سامنے یوسف علیہ السلام ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلام میں بھی یہ جائز ہے کہ آپ کسی کیس کے لیے، کسی کیس کو سالو کرنے کے لیے اس کے قرائن دیکھیں، شواہد دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں جو जैसे आज तक कल भी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, डीएनए टेस्ट किए जाते हैं, इस तरह से चीजें ली जाती हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा, अब इसके कहने के मुताबिक जब देखा गया तो फलम्मा रआ कमीसहु, फिर जब उसने देखा उसकी कमीज को, कुद्दा मिन दुबुरे, तो वो तो पीछे से फटी हुई थी, वो तो पीछे से फटी हुई थी, और ये मामला तो सॉल्व हो गया। काला इन्नहु मिन कैदिकुन, उसने कहा कि ये तुम्हारी चालों में से है, तुम औरतों की चालों में से ये चाल है। तुम औरतें जब अपने जाल में किसी को फंसाना चाहती हैं, चाल चलती हैं, तो ये चाल है तुम्हारी। इन्ना कैदकुन आजीम, बेशक तुम्हारी कैद यानी कैद यानी तुम्हारी जो चालें होती हैं औरतों की, वो बहुत बड़ी होती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया ही है ना कि औरतों की चालों में आके या इनके फरेब में आके बड़े बड़े ओहदों वाले अपने ओहदों से हाथ धो बैठते हैं, बड़े बड़े शुरफा और बड़े नेक पारसा लोग फिसल जाते हैं, बहुत सारे घरों में तलाकें हो जाती हैं इसकी वजह से, क्योंकि कोई औरत ही है जो आके घर को खराब करती है। वो जैसे हम हमारे यहाँ कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो वो इसी वजह से कहते हैं ना कि एक औरत ने ही अप्रोच किया किसी के शोहर को तो वो फंसा। जब औरतों की चालों की बात आती है तो वो मामूली नहीं होती, उनकी चाल अजीम है, बहुत बड़ी होती है। जब कुराने पाक में जहां पे शैतान की चाल के बारे में आया तो फरमाया इन्ना कैद शैतानी काना दाइफा, बेशक शैतान की जो चाल है ना वो कमजोर है, लेकिन जब औरतों की चालों का बात आई तो बताया कि बहुत मजबूत होती हैं इनकी। प्लॉट जब करती हैं तो बहुत ऐसी प्लॉटिंग करती हैं कि किसी को फंसा दें। और आप दुनिया जहान में आप देख लें तो इस तरह के मामलात आपको आम नजर आएंगे। इंसान शैतान की चाल से बच जाता है, लेकिन औरत की जब चाल आती है ना, तो वो आदमी बिल्कुल ही बेजोर होके गिर पड़ता है, सरेंडर कर देता उसके सामने, क्योंकि आदमी के लिए औरत की चाल बहुत बड़ी चीज होती है ना, उसके लिए बहुत, उसको कमजोर कर देती है। कोई औरत लिफ्ट कराए थोड़ा सा भी आदमी को, आंखों से या कोई टेक्स्ट से या कोई और चीज से, तो आदमी फिसल जाता है। तो उसने कहा तुम लोगों की चालें बहुत अजीम है, यूसुफ यूसुफ तुम आ रहे अनहाजा, तुम दरकुसर करो, इग्नोर करो इसको, जो हो गया जाने दो इसको, बस छोड़ो, बस किसी से इसकी बात ना करना, यानी बस अब छोड़ दो इस बात को। और औरत को कहा बस तगफीरी लीदम्बिक, तुम अपने गुनाह की बख्शिश मांगो। हालांकि ये तो बुत परस्त थे, मुशरिक थे, लेकिन इतना पता था इसका मतलब है। देखिए, एक कुछ चीजें होती हैं अल्लाह ताला ने फितरत में डाली हैं, ये फितरत में है इंसान के कि ये गुनाह है, चाहे वो अल्लाह को नहीं मानते या मानते हैं लेकिन शिर्क करते हैं साथ या जो भी, लेकिन फितरत में है कि ये बुराई है, इसी के साथ ऐसी करना ये बुरा फेल है। तो इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा इसके ऊपर तौबा कर तू। अब उसने बस इतना सही कहा, उसने कहा वे इन्ना की कुमती मीनल खौतीन, बेशक तो तू तो खताकारों में से है, बस दैट्स इट, इतना ही कहना काफी था। अब सोचते हैं कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों नहीं दे दी, कि या उसको कत्ल कर देता या ऐसे करता। और तो बाज जगह पे आता है कि नहीं, उसके अंदर गैरत की कमी थी, वो बेगैरत था। बाज जगह आता है कि अगर वो ऐसा करता कुछ तो रेपुटेशन का मामला था ना, सब जगह ये कितनी रुसवाई होती। अब तो इसको बात को उसने यहीं पे ठप देने की कोशिश की कि बस यहीं पे इसको बंद कर दो, चुप कर जाओ, तुमने भी नहीं कोई बात करनी, जस्ट इग्नोर दिस, जो हुआ सो हुआ, जाओ घर को अपने, और तुम औरत तुम अपने गुनाह की माफी मांगो। क्योंकि कुछ भी वो करता, कहीं भी कोई एक्शन लेता ना, तो एक स्कैंडल बन जाना था। और आपको पता है जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी यही मुश्किल होती है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था ये बात कि उसकी बीवी के दिल में कौन सी आग लगी हुई है, इसने तो बाज नहीं आना। तो यहां पे हमें ये बातें पता चली हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो पाक दामनी थी वो सबके सामने आ गई और बात को वहीं पे खत्म करने का कहा गया। अगर आप देखें जो ऐसी बातें होती हैं ना, वो जब हो जाए ना तो वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल आती है। कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है, कहीं ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि हो सकता है कि इनके घर के दूसरे जो नौकर हों उन वो तो देख ही रहे थे कि बहुत अरसे से यहां पे क्या हो रहा है। ये तो चीजें कोई ढकी छुपी नहीं थी। मैंने आपको बताया ये बार बार सिड्यूस करने के लिए आता है रावदत्त, तो ये तो चीजें हो रही थी ना घर में। तो हो सकता है कि उन्होंने उनको ये बात तो ना पता हो लेकिन बाकी बातें तो पता थी, तो उन्होंने अपनी मालकन की हरकतों को बाहर जाके बताया। दूसरे नौकरों को नौकर बताते हैं, फिर वो आगे अपने घरों में बता देते हैं, इस तरह चीजें फैल जाती हैं। मगर जो भी हुआ हुआ ये कि ये बात फैल गई, सारे शहर में फैल गई। अब क्या हुआ, वकाल निस्वतुन, और कहा औरतों ने फिर मदीना थी शहर की। अब शहर में तो गॉसिप्स हो रही हैं और लोगों को शौक भी बहुत होता है गॉसिप्स करने का, और फिर कोई बड़ी बड़ी शख्सियत के बारे में कोई बात हो तो फिर तो हर घर में चर्चे होते हैं। कहे इमरातुल अजीज, अजीज की जो बीवी है, तुराविदु फताहा अन नफसी, वो फुसलाती है और किसको, अपने गुलाम को उसके नफ्स से, वो तो उसके पीछे पड़ गई, वो तो उसको सिड्यूस करती है। अब ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई और ऐसी बातें ना जंगल की आग की तरह फैलती हैं। वो पता है जो स्कैंडल्स होते हैं, जो इस तरह की चीजें होती हैं, और औरतों को खास तौर पे बहुत शौक होता है गॉसिप्स करने का, वो फारिग बात शायद ज्यादा होता है। और वो उन हालांकि अल्लाह ताला ने, आगे आप पढ़ेंगे सूरह नूर में, अल्लाह ताला ने इस किस्म की चीजों को कंडेम किया है। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तुहमत लगी थी तो ऐसे लोग जो गॉसिप्स कर रहे थे उनको भी डांट पिलाई गई कि तुम क्यों नहीं ऐसे चुप रहे, क्यों तुमने चर्चा किया बुराई का। यही हमारा दीन सिखाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के इस्लाम का हुसन ये है कि वो लायानी बातों को छोड़ दे, वो गॉड से जो चीजें आपसे ताल्लुक नहीं रखती उनको कुरेदना, उनको पूछना इसका क्या, उसका क्या, इसका क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, जो हमसे मुतल्लिक नहीं है, क्यों हम उन बातों को करते हैं और बस उन्हीं को डिस्कस किए रखते हैं, किसी ना किसी को टॉपिक बना के उसी के ऊपर बस बात करे जाते हैं। लायानी बातें, हमारा इस्लाम ब्यूटीफुल तब होगा, खूबसूरत तब होगा जब हम ये बातें छोड़ देंगे, हमें नहीं, जब हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो हम क्यों करें। तो यहां पे भी अब ऐसी चीजें होने लगी, बातें कद शगफहा हुब्बा, उन्होंने कहा वो तो इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई है, बेकाबू हो गई, पागल हो गई उसके पीछे, अब ये बातें हो रही हैं, क्रेजी हो गई है। इन्ना लना रोहा फी दुलाल मुबीन, बेशक हम तो उसको खुली गुमराही में देखते हैं, वो तो बिल्कुल ही रास्ते से ही हट गई है। अब इब्ने कय्यम ने इस एक आयत से इतनी बातें निकाली हैं कि किस के कौन सी बातें शो कर रही हैं कि ये औरतें उसको जलील करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। हालांकि बात सच्ची है, वो था ऐसा ही, मगर फिर भी ये इजाजत नहीं है कि किसी के ऊपर ऐसे बात की जाए और उसको टॉपिक बना के और उसको डिस्कस किया जाए और गॉसिप्स की जाए और फिर तुम्हें पता है क्या हुआ, तुम्हें पता है फलां के साथ ये, उसके साथ वो चक्कर में है, उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, उसका उसके साथ है, ये जरूरत नहीं है। बल्कि अगर आंखों से भी देखा हो तो तब भी ना बात करें, अकेले में किसी को नसीहत की जाए ये है उसकी खैरख्वाही, ना कि इसको खैरख्वाही समझा जाए। तो जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने इब्ने कय्यिम ने फरमाया कि देखें, सबसे पहली बात यह कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका नाम ले, उसको कहा इमरातुल अजीज, यानी उसके शौहर के ओहदे से उसको उसकी बात की, जैसे कहते हैं मिसेस प्रेसिडेंट ऐसे करती हैं, जो फर्स्ट लेडी है उसने ऐसे किया है, उसका नाम नहीं लेते। इससे उसकी तहकीर है कि देखो इतने बड़े ओहदे वाले की बीवी ये कर रही है, देखो वजीर की बीवी का ये हाल है। और फिर तुरावीदु फताह, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किसी आदमी के चक्कर में है, उन्होंने कहा अपने ही गुलाम के चक्कर में है, उसके ऊपर ही फरेख्ता हुई भी है। यानी आप कोई ओहदे मनसब वाला होता तब भी बुरी बात थी, लेकिन ये तो एक नौकर के ऊपर रिझी हुई है, कितनी बेइज्जती की बात है, अपने नौकर को नहीं इसने छोड़ा, कितना मतलब कितनी उसके लिए डिमीनिंग बात है, तहकीर की बात है ना। फिर ये कि हाल का सीगा इस्तेमाल किया कि यानी अभी भी इसी काम में लगी हुई, ऐसे नहीं कि पुरानी बात हो गई, अभी भी उसके चक्करों में, तो ये भी और बुरी बात हो गई कि अभी तक उसको फांस रही है। और फिर ये भी कि ये भी पता चल गया कि अभी तक गुलाम उसके जाल में फंसा ही नहीं, तो कोशिशों में लगी हुई है, इसमें भी कितनी उसकी बेइज्जती है, इतने बड़े आदमी की बीवी होके एक गुलाम को ऑफर कर रही है, उसको उसके ऊपर फरेख्ता हो रही है, उसी के ऊपर बेकाबू हो रही है। कद शगफा हुब्बा, इससे पता चल गया वो तो दीवानी हुई पड़ी है, उसके लिए पागल हो रही है, वो है कि उसको लिफ्ट ही नहीं कराता। अब देखिए ना, ये उसके लिए इंतहाई तहकीर की बात है कि गुलाम होके उसने उसको ठुकरा दिया और ये उसकी आशिक बनी हुई, बिल्कुल ही पागल है। फलम्मा समिया, जब उसने सुना, अब जाहिर बातें घूम के तो पहुंच ही जाती है ना, कोई किसी की बात कर रहा हो वो समझता है कि नहीं बात पहुंचनी नहीं है, लेकिन बात पहुंच ही जाती है, कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है, उसको भी पहुंच गई। उसने जब सुना भी मकरी हिन्ना, उनके मकर को, क्या मकर उन्होंने किया, अभी तो उन्होंने कोई चाल ही नहीं चली, उनका मकर ये था कि देखिए खुद सोचें, जब ऐसी कोई बात हो रही हो, इतनी बड़ी औरत है, उसका गुलाम है, उसके पीछे पागल हुई भी दीवानी, तो फौरन क्या जहन में बात आती है कि देखे तो सही वो है कौन, कौन है जिसने इसको इतना पागल बनाया हुआ। अभी कोई छोटी औरत थोड़ी थी, नहीं बड़ी आदमी की बीवी थी, तो इसको भी ये बात पहुंच गई। तो उसने कहा असलत इलैहिन्ना, उसने बुला भेजा उनको, अरसला ना होता ना बुलाना, इनवाइट कर लिया उनको दावत पे। वा आतदत लहुन्ना मुत्तकन, और उनके लिए तकिए वाली मजलिस बिछाई, तैयार की गई, यानी पूरी प्लानिंग की गई कि किस तरह से एक एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसमें फिर क्या होगा ये आगे पता चलेगा ना, क्योंकि वो इनको लाजवाब कर देना चाहती थी कि मेरे ऊपर बातें बनाती हो ना, मैं तुम्हें अब बताती हूँ। ये वो, उसने एक सारी ऐसी प्लानिंग की। तो अब जब वो आतत कुल्लु वाहिदत इन मिनहुन सिक्कीना, और दी हर एक औरत को इनमें से एक छुरी। अच्छा, अब ये हुआ कि जब खाना पीना खत्म हो गया और एक रिलैक्सेशन का टाइम हुआ, तो डिजर्ट में वहां पे मीठे में फल दिया करते थे, तो उसने फल मंगवाए, फल दिए उनको और छुरियां भी दी। और फिर जब वो छुरियां उनके हाथों में थी और वो फल काटने को तैयार थी, फल काटने लगी, वकालते खरुज अलैहिन्ना, तो उसने कहा कि निकल आओ इनके सामने, उन यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज दी। फलम्मा रअयनाकहु, जब रअयना, उन्होंने देखा, हु उसको, अकबर ना हो, उन्होंने समझा उसको बड़ा, यानी इतनी इंप्रेस हो गई, वो तो दंग रह गई, उनके होश गुम हो गए, इतने होश गुम हुए कि वक़्त ताना अइदियाहुन्ना, कि उन्होंने काट लिए अपने हाथ, उनको यही नहीं पता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, इतनी मभूत हो गई, इतनी मैसमराइज्ड हो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुसन से। आखिर देखिए ना, आप खुद अंदाजा करें, दुनिया का कोई भी हसीन से हसीन इंसान आपने देखा हो, औरतों में, आदमियों में, तो उसका हुस्न कुछ नहीं है, उसका हुस्न कुछ नहीं है, वो उस हाफ का भी एक पोर्शन है जो उसको मिला है। और कहां पूरी दुनिया का जो अल्लाह ताला ने हुस्न पैदा किया उसका आधा हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, तो उनका हुस्न क्या होगा। तो उन्होंने अपने हाथ काट लिए, उनको पता ही नहीं चला। तो ये इस बात की निशानी है ना कि वो कितने खूबसूरत थे। और ये कोई छोटी छोटी लड़कियां तो थी नहीं, बड़ी बड़ी बेगमात थी। लड़कियां हो तो फिर भी कोई बात समझ आती है, ये तो औरतें थी। और क्या कहने लगी, वकुलना, और कहने लगी हाशा लिल्ला मा हादा बशरा, हाशा लिल्ला, पाकी है अल्लाह की। यानी एक तो ये इसमें ये कि अल्लाह ताला कितना बाकमाल है कि उसने ऐसी चीज पैदा की, ऐसा इंसान पैदा किया। दूसरा इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, खुदा की पनाह, अल्लाह की पनाह। यानी इसको तो देख के हमें लगता है कि कोई इंसान ही नहीं है, खुदा की पनाह, ये कैसा इंसान है। यानी कलमा ताज्जुब है ना। तो इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कुछ नहीं है मगर एक फरिश्ता है, मुअज्जज फरिश्ता है, तो इंसान ही नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता लग रहा है। इसलिए देखें, चाहे वो मुसलमान तो नहीं थी, अल्लाह को जानती होंगी, इसीलिए उन्होंने कहा हाशा लिल्ला, लेकिन शिर्क करने वाली कौम थी ये। मगर ये बात पता चलती है कि उनको क्या फरिश्तों का पता था कि वो कह रही है कि फरिश्ता है। इसलिए कि देखिए, जितने भी मजाहिब हैं, फरिश्तों का कॉन्सेप्ट अक्सर मजाहिब में है, और फरिश्तों के बारे में इंसान के दिमाग में किसी ने देखा थोड़ी हुआ है फरिश्ते को, लेकिन दिमागों में सबके ये कि फरिश्ते को बहुत खूबसूरत मखलूक है। और वाकई जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा उनकी असल शक्ल में, और जब इंसानी शक्ल में भी आते थे तो दहिया कलबी की शक्ल में आते थे, जो बहुत ही खूबसूरत सहाबी थे। तो वो भी अपना मुंह छुपा लिया करते थे जब किसी औरत से बात करते थे कि कोई फितने में ना पड़ जाए। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी तफसीरों में आता है कि तो अपना मुंह छुपा लेते थे कि कोई औरत फितने में ना पड़ जाए, इतने खूबसूरत थे। तो उनको होश ही नहीं रहा उन औरतों को, और उन्होंने अपने हाथ काट लिए और उनका खून टपकने लगा। तो उस वक्त उसने उनको वापस भेजा और कहने लगी फज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, ये है जिसमें तुम मुझे इल्जाम देती थी, मुझे मलामत करती थी कि देखो अपने गुलाम के पीछे लगी हुई और उसकी दीवानी और उसकी आशिक हो गई है, ये देखो अब बताओ मुझे। यानी उनको रियलाइज कराना चाहती थी ना कि मेरा क्या कसूर, मैं तो बेकसूर हो गई, क्योंकि जब ये है ही इतना खूबसूरत तो मेरा क्या कसूर है, और तुम अपना हाल देखो, तुम्हारा अब क्या हाल हुआ, जबकि तुम तो थोड़ी देर के लिए देख रही हो और मैं तो इसके साथ रहती हूँ, दिन और रात इसको देखती हूँ। और फिर उसने कहा वलकद रावत तू अन्नफसी, मैं मानती हूं कि मैंने इसको फुसलाना चाहा है उसके नफ्स से, फस्ता सम, लेकिन ये हर दफा बच जाता है। मैंने देखे अब आप इसमें भी कि उसको हया नहीं थी कि वो खुले आम लोगों के सामने एक बात करे, और देखिए गुनाह की सिवेरिटी बढ़ जाती जिस वक्त के उसको खुले आम बयान किया जाता। तो मैंने तो उसको टेम्प्ट किया लेकिन ये बच गया, इसने इनकार किया। और इससे जाहिर है, इससे पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर से तो खूबसूरत थे, उनका अंदर भी कितना खूबसूरत था कि एक शराफत, नेकी, पाकीजगी ये थी उनके अंदर, वरना हर दफा बच जाना आसान नहीं। और फिर वो कहने लगी वल इल वल इन लम यफ अल, और अलबत्ता अगर, यानी इसमें भी ताकीद है, जोर है और पक्की बात है कि अलबत्ता अगर ना करे मा आमुरुहु, जो मैं हुक्म देती हूं इसको, तो क्या होगा, मैं क्या करूंगी, ला युस जनन्ना, अलबत्ता मैं इसको जरूर कैद करा दूंगी, वाला यकून मिन सौगरीन, और अलबत्ता ये हो जाएगा जलील होने वालों से, मैं इसको जलील करके रख दूंगी, मैं इसको जेल करा दूंगी। जो तरीके होते हैं एलीट किस्म के लोगों के, जब उनकी कोई नहीं चलती, उनकी बात नहीं मानी जाती, तो वो ऐसे ओछे हथकंडों पे आ जाते हैं और वो ऐसी बातें करने लगते हैं, धमकियों पे आ जाते हैं, मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अब जाहिर है इतनी एलीट औरत थी और वो भी सारी औरतें थी, और बाज जगह पे आता है कि उन औरतों ने भी कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते यूसुफ की, अपनी मालकन की बात मान जाओ, ये तो तुम्हारी मोहसिन है, तुम क्यों इसकी मुखालफत करते हो। तो एक और मुसीबत में फंस गए। तो वो कहने लगी कि ये तो मेरा कहना, अगर इसने ना माना ना तो मैं तो देखना फिर क्या करती हूँ इसके साथ। अरे अभी भी उसने अपने इरादे को नहीं छोड़ा। इससे पता चलता है कि उस सोसाइटी का क्या हाल था। अब तो वो पब्लिकली अनाउंस कर रही है, अब तो उसको शर्म भी खत्म हो गई है, अब तो उसके अंदर ये भी नहीं है कि मैं कुछ सोचूं कि ये औरतें सुन के और क्या बातें करेंगी। उसने बस उनके सामने सच्चे होना था, उनके सामने हो गए। अब देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम अब क्या करते हैं। फिर अल्लाह की तरफ रुजू, काला रब्बिस सिजनु। अब उसने जो कह दिया कि मैं कैद कराऊंगी, मैं जेल करा दूंगी, उन्होंने फरमाया ए रब, ए मेरे रब, कैद खाना अहब्बु इलैया, ये ज्यादा प्यारा है मुझे, मिम्मा यदउननी इलै, इससे जो ये मुझे अपनी तरफ, जिसकी जिस चीज की तरफ ये मुझे बुलाती है। ये भी नहीं कहा जिना या इश्क या गलत काम, वो नहीं फरमाया, फरमाया जिस चीज की तरफ ये मुझे बुलाती है मैं उससे ज्यादा ये पसंद करता हूं कि मुझे कैद खाने में कैद हो जाऊं। अल्लाह अकबर, इतनी ज्यादा बुराई की कराहत, इतनी ज्यादा बुराई से नफरत, ये सबूत है यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का। ये पहले तो एक औरत थी, अब ये सारी औरतें पीछे पड़ गई। तो अब आप देखें कि वैसे कोई आम इंसानों या बाज औरतें भी बड़ी खुश होती हैं कि उनके दीवाने बहुत, उनके चाहने वाले बहुत, उनके फैंस बहुत, उनके हुसन के ऊपर मतलब आशिक होने वाले बहुत, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम खुश नहीं है। पता चलता है कि वो खुश नहीं, इसलिए कि जो इंसान अल्लाह से डरता है ना तो उसको वो चीजें परेशान कर देती हैं जो अल्लाह की नाफरमानी में डाल देने वाली, जहां उसकी नेकी को खतरा है, जहां उसके ईमान को खतरा है। आज तो लोग खुद को खुद फितने में डालते हैं, जैसे मैं आपसे कहा कि फितने की जगह जहां पे फितना हो, या ऐसी साइट्स खुद खोल लेते हैं, या ऐसे दोस्त बना लेते हैं, या ऐसी मजलिसों में जाकर खुद ही बैठ जाते हैं, या ऐसी इनविटेशन को कबूल कर लेते हैं, या ऐसी बातों को सुनते हैं, या ऐसे सीन्स को देखते हैं, या ऐसे किसी के साथ कमरे में अकेले हो जाते हैं, या ऐसे ताल्लुकात बना लेते हैं, या ऐसी प्राइवेट चैटिंग शुरू कर देते हैं, और ये नहीं सोचते कि ये फितना है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। ये कदम बढ़ तो रहे हैं मगर ये आगे जाके कहां तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, इंसान के अपने अंदर अल्लाह ताला ने एक अलार्म सिस्टम फिक्स किया हुआ है, वो अलार्म बोलने लगता है जब कोई गड़बड़ होती है। इसके बावजूद अगर इंसान उस रास्ते पे चलता रहे तो आगे फिर तबाही है ना। या यूसुफ को देखें कि इतनी दीवानगी, सारी औरतों की भी दीवानगी देख ली, अब तो वो उनको इतना प्राउड हो जाना चाहिए था, बहुत एरोगेंट, मैं तो इतना हसीन हूं। हुसन भी इंसान के लिए इस तरह से भी फितना बनता है कि इंसान अपने आप को इतनी बड़ी चीज समझ लेता है कि मेरे से ज्यादा तो हसीन ही कोई नहीं, और देखो सारे मेरे पीछे कितने दीवाने हो रहे हैं। तो इसके ऊपर वो खुश होते, लेकिन वो खुश नहीं, वो परेशान हो गए। लोगों की, इन औरतों की दीवानगी ने उनको ऐसा नहीं किया कि फखर से फूले समाते, वो फूले भी नहीं, उन्होंने तकबर भी नहीं किया, उल्टा कह रहे हैं कि यार अब कैद मुझे प्यारी है इस चीज से। और पाकीज़गी जुबान की कितनी है कि वो लफ्ज तक नहीं बोल रहे। और फिर कहते हैं वह इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, और अगर नहीं तू फेरेगा मुझसे इन औरतों की चाल को, असबू इलैहिन्न, मैं मायल हो जाऊंगा अल्लाह इनकी तरफ, अगर अल्लाह तूने नहीं मुझे बचाया ना। यानी अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं तो इतना पाक और साफ, और मैं तो पहले भी बचा था, मुझे कौन फुसला सकता है, मुझे कौन फंसा सकता है, मुझे कौन अपनी तरफ मायल कर सकता है, नहीं अल्लाह मैं कमजोर हूं। और यही इंसान की आजजी होती है कि कि वो अल्लाह ताला के आगे झुक जाए, बिछ जाए कि अल्लाह मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, गुनाह से बचने की भी ताकत मेरे अंदर नहीं अल्लाह, जब तक तू ना बचाए। तो ऐ अल्लाह अगर तू नहीं मुझे बचाएगा तो मैं इनकी औरतों की चाल की तरफ मायल हो जाऊंगा, उनके लिए मायल होना भी, इंक्लिनेशन भी उनको कबूल नहीं है कि मैं जरा सा भी इनकी तरफ मायल हूं। कुछ करना आगे बढ़ के वो तो दूर की बात है। वाहकुम मिनल जाहिलीन, और अल्लाह मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। फिर जाहिल कौन होता है? जो बगैर सोचे समझे कोई काम करता है, इग्नोरेंट, गुनाह करता है और वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूं। अल्लाह ये ना हो मुझसे गुनाह हो जाए, तब देखें अगेन वो अल्लाह ताला से पनाह, अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। तो वो औरतें ये कह रही हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआएं कर रहे हैं। और देखें एक इंसान जो इतना पाक साफ है, और सोचें ये माशरा कितना बेहयाई का, उसमें रहते हुए खुद को पाक साफ रखना कितना मुश्किल काम है। जैसे आज भी हम बेहयाइयों के माशरों में रहते हैं, हर तरफ बेहयाई है, हर तरफ आप जिधर देख लें, साइन बोर्ड से लेकर उसमें भी ऐसी औरतों की तस्वीरें, ऐसे एड्स, आप टीवी उठा लें, आप कंप्यूटर ले लें, आप फोन पकड़ लें, हर तरफ बेहयाई ने मुंह खोला। ऐसे वक्त के अंदर इंसान अपनी इज्जत की हिफाजत करें, नौजवान लड़के लड़कियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करें, किसी के जाल में ना फंसे, खुद को बचाने की कोशिश करें, ऐसे फितनों की जगहों से दूर रहें जहां से कहीं कहीं भी कोई जरा सा भी शायबा भी हो ना कि यहां पे कोई मसला हो सकता है, उन जगहों से दूर रहें। यूसुफ अलैहिस्सलाम से हम पाक दामनी भी सीखते हैं, मर्द हो के कितने पाक दामन, और औरतों को तो इससे भी ज्यादा अपनी पाक दामनी की फिक्र रखनी चाहिए। और आप देखें ये आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ वो औरतें हैं जो हाई सोसाइटी की हैं, लीड क्लास की हैं, इन पे बड़ा स्टेटस है इनका, इनकी जाहिर है बड़े पावरफुल लोगों की बीवियां हैं, मामूली बात नहीं है। दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या है, उस सोसाइटी में उनका कोई ऐसा मकाम मर्तबा नहीं, तो वो तो बड़ी आसानी से एडवांटेज ले सकते थे। आप देखिए आजकल भी लोग जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनके साथ क्यों कॉन्टेक्ट बनाते हैं, भाई इनके से कल को कोई काम ले ले, फिर उसके बाद फखर भी बड़ा करते हैं कि हमारे जो फलां कॉन्टेक्ट हैं, मैं तो फलां को भी जानता हूं, मेरे तो फलां के साथ दोस्ती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कोई ऐसा कर सकते थे कि चलो बेगमात हैं ये, अगर ऐसा ये बातें कर रही हैं और मेरे से इतनी मुतासिर हैं तो मैं इनके साथ कॉन्टेक्ट रखूं, इनको नाराज ना करूं। ओके, और वो तो उनका तो मसला भी ऐसा था कि वो एक यानी ऐसी जगह पे, एक ऐसी जगह पे एक गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, तो अब वो कोई ओहदा लेना चाहते, आजादी लेना चाहते, कोई काम अपना निकलवाना चाहते, तो बहुत आसानी से करा सकते थे इनका कहना मान के। इसके बराक्स वो क्या कह रहे हैं, इसे पता चलता है ना कि गुनाह से बचना, वो गुनाह की जगहों से खुद को बचाना, ये कितना बड़ा एक जिहाद है, और कितनी एक अंबिया की को अपनी इस्मत का ख्याल होता था, अपनी इज्जत का ख्याल होता। और बाज दफा लोग इसी दुनिया के अंदर ऐसे भी हो जाते हैं कि वो अपनी बीवियों को सीढ़ी बनाते हैं अपने बॉस का दिल जीतने के लिए, प्रोमोशंस लेने के लिए। और यहां पे बड़ी बड़ी मालदार औरतें हैं तब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई ऐसा हरबा नहीं इस्तेमाल कर, और कोई ये नहीं कह रहा है कि अल्लाह अब मैं क्या कर सकता हूं, अल्लाह मेरी तो मजबूरी हो गई है। तो जब भी इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, अल्लाह से रुजू करें, फस्तजाब लहू रब्बुहु, और अल्लाह ताला सुनता है जब बंदा पुकारता है, अपने दिल से पुकारता है, अल्लाह ताला जवाब देता है, अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई उनकी दुआ, फसरफ अनहु कैदहुन, अल्लाह ताला ने फेर दी इन औरतों की चाल उनसे, इन्नहु वस्समीउल अलीम, भूल जाते हैं अल्लाह ताला सुनने वाला भी है, जानने वाला भी। वो जानता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने की और दुआएं कर रहे हैं। अगर उनका कोई बस वैसे तो चल नहीं रहा, क्या कर सकते थे वो, लेकिन दुआ तो कर सकते थे, वो दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। सुम्मा बदा लहुम मिन बादी मा रअउल आयात, फिर जाहिर हो गया उनके लिए इसके बाद जो उन्होंने देखी निशानियां। फिर जाहिर हो गया उनके लिए यानी इन निशानियों, सारी निशानियों को देख लेने के बावजूद भी उनके ऊपर यही जाहिर हुआ कि ला यसजुनन्नहू हत्ता हीन, के वो कैद में डलवा दें इसको एक वक्त तक। उनको यही लगा कि अब तो देखे ना, पूरे शहर की औरतों में बात फैल गई, पूरे शहर की औरतें दीवानी हो गई। अब और औरतों के क्या हाल हो रहे होंगे जो कि अपने हाथ ही काट बैठी। अब उन्होंने एक दफा यूसुफ अलैहि सलाम को देख लिया था, अब क्या आगे उनकी होती है। तो अब खैरियत इसी के अंदर थी, जब ये सारी निशानियां भी जाहिर हो गई, सारा मसला सामने आ गया, तो अब ये मसलहत इसी में थी, क्योंकि बात फैल गई थी ना भाई। इस औरत ने भी सबके सामने कह दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से दुआ भी की थी। तो अब इसी के अंदर खैरियत थी कि इनको कुछ देर के लिए जेल में डाला जाए, जबकि इनका कोई भी कसूर नहीं था, कोई भी कसूर नहीं था। तो आप देख लें, बाज लोग सिर्फ इसलिए कि वो अपने असूलों के ऊपर कायम रहते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं करना इस नौकरी में, कोई रिश्वत नहीं लेनी है, कोई और ऐसी सिफारिशें नहीं सुननी, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता, कसूर भी नहीं होता, वो तो हक पे होते हैं। बल्कि यही बात आप यहां से भी देख रहे हैं ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बल्कि मासूम है, और उनको उल्टा जेल में भेज दिया गया। बाज़ दफा इंसान को हक के ऊपर रहते हुए भी मसाइब बर्दाश्त करने पड़ते हैं। वो हक पे होता है, ये नहीं कि वो गलत है इसलिए वो मसले में पड़, वो हक पे होता है, फिर भी उसको एक कीमत अदा करनी पड़ती है। अल्लाह ताला हमें इन आयात से बेहतरीन सबक लेने की तौफीक अता फरमाए और इनको अपनी जिंदगियों में अमल में लाने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرناه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
الحمد لله جزاك الله خيرا كثيرا. الله تعالى سے دعا ہے کہ اللہ تعالى عبد العليم بیٹا جن کی ہم نے ابھی تلاوت سنی ہے اللہ تعالیٰ اس تلاوت کے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو قرآن کے نور سے روشن فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے یہ ہماری سسٹر مہر ہماری اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا, لیکن ان کی پیاری آواز آج بھی ہم سن پا رہے ہیں. اور یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے, انسان جو نیکی کر جائے اس کے بعد پیچھے سے لوگ اس کو سنتے ہیں اور ان باتوں سے لوگوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں, یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی صدقہ جاریہ کے کام لے لے. اور یہ ماشاءاللہ اپنے والدین کے لیے مطلب کتنی ان کے لیے سعادت ہے, ان کے والدین کے لیے کہ آگے تک ان کی آواز کتنی لوگوں تک پہنچ رہی ہے. الحمد لله. जी जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा हुआ है, जो बीमार हैं, अल्लाह ताला तमाम को शिफाए कामला अजला अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को दूर फरमाए। बाज लोग नहीं चाहते उनका नाम लिया जाए, तो हम अमूमी तौर पे सबके लिए ही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबकी बीमारियों को दूर फरमाए। जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबियां अता फरमाए। जिनकी जो हाजात हैं, जो मसाइल हैं, अल्लाह ताला उनके मसलों को हल फरमाए। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। किसी के दिल की सख्ती को दूर करने के लिए कोई दुआ बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुस्खा बताया था, जब किसी ने अपने दिल की सख्ती की बात की थी, तो फरमाया था कि मौत को कसरत से याद करना और फिर यतीम के सर पे हाथ रखना, यानी यतीमों को देखें, यतीमों के साथ वक्त गुजारें, यतीमों को स्पॉन्सर कीजिए। तो इससे इंशाल्लाह दिल की सख्ती दूर होती है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्यारे उस्ताद, जजाकल्लाहु खैरन कसीरा। प्लीज प्रे फॉर माय ब्रदर, ही इज हैविंग अ शोल्डर सर्जरी टुडे फॉर हिज क्विक कंप्लीट रिकवरी। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अजला अता फरमाए और सर्जरी में उनके लिए शिफा डाल दे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मे अल्लाह सुब्हान तआला ग्रांट यू एंड योर फैमिली ऑल द ब्लेसिंग एंड हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड आखिरा, आमीन। माई क्वेश्चन इज दैट इन लास्ट वीक्स तफसीर यू मेंशन दैट याकूब अलैहिस्सलाम हैज हैड मैरिड यूसुफ अलैहिस्सलाम्स आंट, वाज दैट याकूब अलैहिस्सलाम्स फोर्थ वाइफ? अब हो सकता है वो उनकी चौथी बीवी हो या चार बीवियों में से कोई बीवी हो, ऐसे कुछ लिखा नहीं हुआ कि कौन सी बीवी थी। जब एक उनकी बीवी फौत हो गई थी, जिनसे याकूब सॉरी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे, तो वो कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने एक और शादी की थी, ये हमें रिवायात में मिलता है, जो कि उनकी खाला थी। अब वो चौथी थी या तीसरी थी ये नहीं कुछ कह सकते। हाँ, दो और बीवियों का भी जिक्र आता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नाया 26 शाहिद डजंट मीन द पर्सन इन द फैमिली हु विटनेस द इंसिडेंट। नहीं, यहाँ पे शाहिद का मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने देखा था, मगर उन्होंने एक वो प्लान दिया था जिससे ये मामला सॉल्व हो जाए। ठीक है, विटनेस किसी ने नहीं किया, वो तो दरवाजे बंद थे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह ब्यूटीफुल तिलावत एंड ब्यूटीफुल तफसीर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रिक्वेस्ट फॉर दुआ फॉर फ्रेंड्स फॉर 4-year-old daughter who is in ventilator since 4 days. अल्लाह ताला उस बच्ची को शिफा कामला अजला दे और सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माय डियर उस्ताजा, माय हस्बैंड खालू इज इन ICU, प्लीज प्रे फॉर हिम। अल्लाह ताला उनको शिफा कामला अजला दे और सेहत वाली जिंदगी, ईमान वाली जिंदगी दे। आमीन आमीन या रब। माशाल्लाह, मे अल्लाह सुब्हान तआला ब्लेस द सोल एंड सब्र जमील टू द फैमिली। आमीन या रब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। प्लीज आप इस बात का जवाब दें कि वुमेन ने शादी के बाद अगर हस्बैंड नेम लगा लिया हो और सारे डॉक्यूमेंट भी हस्बैंड नेम के साथ हों, तो वो फादर नेम कैसे वापस कर सकती है? क्या वो अगर ऐसा ना करे तो क्या गुनाह है? यासिर काजी ने कहा है कि डॉक्यूमेंट ने चेंज करे पर डेली लाइफ में अपना नेम चेंज कर ले जहां तक पॉसिबल हो। देखिए, ऐसे कोई इसमें गुनाह की बात नहीं है। पता नहीं अभी व्हाट्सएप पे बहुत ही उस चीज को वो करके कि जिसने अपना खानदान का नाम से शौहर का नाम लगाया तो वो इतनी गुनाहगार वगैरह, उसके अंदर हदीस भी ले आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपना नसब चेंज किया तो उसके वो मतलब ये हराम है ये करना और ये गुनाह। तो बात ये है कि नसब नहीं आप अपना चेंज कर रहे, आपने अपने नाम के साथ हस्बैंड का नाम लगाया जो नॉर्म ऑफ द टाइम है, ये इस टाइम के अंदर जो आपका लास्ट नेम है, अगर हस्बैंड का नाम लगा हुआ है, अगर नहीं लगाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लगा लिया है तो कोई गुनाह नहीं हो गया इसके अंदर। ये कोई आपके जो लास्ट नेम है उसको कोई आपका ये नहीं समझता कि आपके फादर का नाम है, वो उसको हस्बैंड का नाम ही समझते हैं। तो आप अपने फादर का नाम लगाएंगी तो तब भी वो उसको हस्बैंड का ही नाम समझेंगे, तो इसलिए इसी ये आजकल का नॉर्म इसी तरह है कि लास्ट नेम को हस्बैंड का नेम समझा जाता है। कोई इस गलत फहमी में नहीं रहता कि आपका ये जो फैमिली नेम है ये है, यानी जो आपके पेरेंट्स जो आपके फादर से आपको मिला था वो ये नाम। तो बदलने की तो ऐसी कोई बात ही नहीं कि आपने किसी को धोखा दिया कि मेरा कोई फादर के नाम से कुछ और नाम था और मैंने अपना किसी को धोखा देने के लिए कुछ और नाम रखा। ऐसा नहीं है, सबको पता ही आपके हस्बैंड का नाम है। वो उस बंदे के लिए जो लोगों को धोखा देने के लिए या लोगों को से छुपाने के लिए अपनी फैमिली का नाम चेंज करके किसी और का नाम लगा देता है, उसको हदीस ठीक है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत की गई है जो ये व्हाट्सएप के ऊपर बार बार भेजे जाते। तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं ना, आपको ऐसी जरूरत है कि अब आप उल्टे सीधे होके अपनी डेली लाइफ में आप अपना नाम चेंज करके जहां तक पॉसिबल हो, कौन लास्ट नेम से तो कोई किसी को बुलाता ही नहीं डेली लाइफ में, क्या आपको पूरे पूरे नाम लेके कोई बुलाता है? पहला ही नाम लेते हैं लोग, कोई ऐसा मसला नहीं है इसके अंदर, इशू नहीं है, इसको इशू बना लिया गया। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह प्यारे उस्ताद, आप कितना अच्छा समझाती हो माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला आपको जजाए खैर अता फरमाया, हम सबको अर्श का साया नसीब करे, आमीन या रब। अल्लाह ताला कबूल करे मेरा समझाना, तो कोई चीज नहीं, ये आयात ही इतनी प्यारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इनसे इंसान को बहुत सबक मिलते हैं, और अल्लाह ताला हमें इनसे सबक लेने वाला बनाए। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह उस्ताद, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू एंड योर फैमिली फॉर ऑल योर एफर्ट्स, आमीन बी। ऑल लव यू सो मच, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत कबूल करे। मे माय नेबर्स फ्रेंड शी इज मेकिंग कुकीज फॉर वैलेंटाइन विद हार्ट शेप एंड सेलिंग। आई आस्क हर व्हाई आर यू राइटिंग वैलेंटाइन्स नॉट राइट, शी सेड आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग, आई एम जस्ट सेलिंग इट फॉर वैलेंटाइन। नहीं, ये भी सही नहीं है कि आप उसके ऊपर वैलेंटाइन लिख के और उसको करें। आपकी पार्टिसिपेशन उनकी तो हो गई ना, फिर भी कर नहीं भी रहे लेकिन एक गलत चीज में पार्टिसिपेट तो किया ना। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह उस्ताद, नमाज एक सूरा फातिहा के बाद आमीन दिल में कहना है या आउट लाउड कहना? और अगर जमात में पढ़ रहे हैं आप तो हल्की आवाज में औरतें कहीं कह सकती हैं, बहुत ऊंचा नहीं। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आपके वक्त में अल्लाह सुब्हान तआला बरकत से के, आमीन या रब, आमीन आमीन या रब। आप लोगों के लिए भी यही दुआएं हैं। अलैकुम अस्सलाम तला प्यारे साहब, जब मैं तफसीर सुन रही थी दिल से एक ही बात निकल रही थी कि या अल्लाह ये बात, या अल्लाह ये बच्चे को सेहत दे, उम्र लंबी करे, कुरान के नॉलेज दे, लेकिन जब मैंने सुना ये बच्चा इस दुनिया में नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल, अब आप उसके लिए उसकी अगली जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है उसके लिए दुआ दे दीजिए ना, कि अल्लाह ताला वहां पे इससे राजी हो जाए। उसने जितनी भी यहाँ पे तकलीफ उठाई है अल्लाह ताला उसी को उसके लिए दर्जात की बुलंदी का बायस बना दे, और कयामत के दिन वो अपने वालदैन के लिए जन्नत के दरवाजे पर इंतजार कर रहा हो और उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले ना। माँ बाप के लिए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी औलाद जो दुनिया से चली जाती है वो माँ बाप के लिए जहन्नुम से आड़ बन जाती है। लव यू सो मच फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुबहान तआला, सो ब्यूटिफुल, यू आर सो ब्यूटिफुल बाय हार्ट, अल्लाहू अकबर, आपने तो मेरा हार्ट नहीं देखा, अल्लाह ब्यूटिफुल बना दे। प्लीज प्रे फॉर माई फादर इन पाकिस्तान, ही हैज 3 टाइम्स अभी डायलिसिस, अल्लाह ताला शिफाए कामला अजला अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको भी जो हमारे पास आजा अल्लाह ने दिए हैं इनको सलामत रखे जब तक हमारी जिंदगी है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह प्यारे सारे, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा फॉर सच अ ग्रेट तफ़सीर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम ईवल। बिल्कुल, उनकी कोशिश देखें, उनकी स्ट्रगल देखें कि गुनाह से अपने आप को बचाना है। अल्लाह काश हमारे अंदर भी इतनी तड़प हो कि बस मैंने गुनाहों से बचना है, मैं गुनाह के अंदर ना पड़ जाऊं, इतनी फिक्र हमें जिंदगी में अल्लाह लगा दे। हमें जितनी फिक्रें और चीजों की होती हैं अल्लाह इससे ज्यादा फिक्र हमें इस चीज की हो जाए। आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत फरमाए और अपने अर्श का साया नसीब करे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बिलॉवड उस्ताजा, मे अल्लाह ब्लेस यू विद हैप्पीनेस एंड नजर, आमीन। आई वांटेड टू आस्क यू इफ वी कैन वॉच सीरीज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स और कंपेनियंस टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ द इवेंट्स। जी बिल्कुल दिखा सकते हैं, साथ उनको समझा भी दे, लेकिन वालेकुम अस्सलाम। उस्ताजा मेरी साबित कदमी के लिए दुआ करें और हस्बैंड को हिदायत के लिए प्लीज। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए और हम सबको साबित कदमी दे। आपके हस्बैंड को ही नहीं, हम सबको हिदायत का रास्ता चाहिए। आई बिलोंग टू वन गुमराह कुन फिरका विच आई लेफ्ट 5 ईयर्स अगो एंड आई ज्वाइंड यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बट नाउ माई पेरेंट्स आर इमोशनली ब्लैकमेलिंग मी, बट आई हैव माई हस्बैंड सपोर्ट, सो प्लीज दुआ फॉर माई हस्बैंड। अल्लाह ताला आपके हस्बैंड को भी साबित कदम रखे, आपको भी रखे। और आज आपने ये जो पढ़ा है, अब इसके बाद मुझे बताएं इससे ज्यादा ब्लैकमेलिंग क्या होगी जो इस औरत ने, अजीज की बीवी ने की कि मैं ऐसे कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं, और थ्रेट्स के साथ ब्लैकमेलिंग करना कि गुनाह की तरफ वो आ जाए। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की डिटर्मिनेशन, तो इससे तो आप बहुत हिम्मत पकड़े, बहुत हौसला आपको मिलना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे लोग कैसे होते हैं और किस तरह जम जाते हैं और हक का रास्ता नहीं छोड़ते। गुनाहों से बचने के लिए वो कैसे अपनी सारी कोशिश लगा देते। तो वो अगर ब्लैकमेल करें भी तो आपने नहीं होना, आप उनको अपनी तरफ लेकर आए। और अल्लाह ताला ने आपको हिदायत का रास्ता दिखाया कि इतनी बड़ी नेमत है कि इसके ऊपर जितना शुक्र अदा करें कम है। और हर वक्त दुआ करें कि अल्लाह ताला जिस तूने गुमराही के रास्ते से मुझे निकाला है, मुझे वापस उस दलदल में ना डाल देना। और मुझे ना बहुत खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है जिस वक्त कि मैं ऐसी कोई मैसेज ईमेल में या आप लोग जो भी शेयर करते हैं मेरे साथ उसमें सुनती हूँ पढ़ती हूँ कि हमारी लाइफ चेंज हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी सारा काम है ये बस मुझे लगता है कि शुक्र है ये काम आ गया, ये जो सारी मेहनत है ये काम आ गई। और मेरे पास अमल का तो कुछ भी नहीं है, मेरे अमल बिल्कुल जीरो है, लेकिन बस मैं ये कहती हूँ कि कयामत के दिन मैं अल्लाह ताला के सामने आप लोगों को रखूँ और कहूँ कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगियां चेंज हुई थी, तो अल्लाह ताला इसके ऊपर मेरी भी बख्शिश कर दे। बस तो अल्लाह ताला हम सबको माफ करे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि जब आप लोग ये शेयर करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह के इस क्लास से जुड़ने के बाद अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी और आपके घरों में दीन आया, तो अल्लाह का शुक्र है। कांट वेट फॉर रमदान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदान। और आज की नेकी प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वहां तक पहुंचा दे। और इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिशों में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह हम पर्शियन में भी कोर्स शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स फैमिलीज में कोई पर्शियन सिर्फ बोलते हैं लोग और कुछ और जुबान नहीं समझते, तो आप उन तक ये खुशखबरी पहुंचा दीजिएगा क्योंकि अल्लाह ने ये इंतजाम किया है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्ताद वन मोर क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन तकदीम और ताखीर। यानी तकदीम और ताखीर ये होती है कि आगे पीछे करना, जो आगे वाली बात है वो पीछे आगे और पीछे वाली आगे, ठीक है। ये बाज दफा होता है पुराने पाक में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्ताद एंग्री हस्बैंड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में भी कोई लेक्चर करें। समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप कंट्रोल ऑन आवरसेल्फ एंड डू सबर। बिल्कुल अल्लाह ताला है, ए, 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 उनको अगर वो सबर करेंगे और अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो अल्लाह ताला उनको कयामत के दिन इसके बदले में हूर अता फरमाएगा, इस उनके अमल के बदले में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साजा दुआ करें अल्लाह मेरी हर मुश्किल को आसान कर दे, आमीन आमीन। अल्लाह हम सब की मुश्किलों को आसान करे और अमल करने में मदद फरमाए, आमीन। आप जब हम सबको अपने बच्चे के कहना मोहब्बत में आंसू निकले, लव यू सो मच, आई रियली वांट टू मीट यू वंस इन माय लाइफ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मिलाए और खैर और खुशियों के साथ मिलाए। आई लव यू प्यारी उस्तादा एंड दिस गैदरिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसी मजलिसों का ही हमें हमेशा हिस्सा रखे और अल्लाह की खातिर ये जो मोहब्बत है इसको कबूल फरमाए और अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हस्बैंड गुमराही के रास्ते पकड़े तो हमें क्या करना चाहिए? वो हाफिज हैं, तजवीद के माहिर हैं, लेकिन वो भजन और गाने गाते और अस्तग़फ़िरुल्लाह सीखते हैं, सिखाते हैं काफिरों को, प्लीज हेल्प मी एंड प्रे फॉर हिदायत, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। दिल अल्लाह ताला की करीम उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह ताला जिधर को चाहे दिलों को मोड़ दे, अल्लाह उनको भी हिदायत का रास्ता दिखा दे, इस गुमराही से निकाल दे और आपके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला आपको जरिया बना दे उनके लिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि प्रॉफिट याकूब की कौम कैसी थी? याकूब अलैहिस्सलाम की कौम तो नहीं थी ये तो मिस्र के रहने वाले लोग थे, ठीक है, ये याकूब अलैहिस्सलाम की कौम नहीं थी। याकूब अलैहिस्सलाम तो पीछे फलस्तीन में रह गए अपने इलाके में। वालेकुम अस्सलाम। उस्तादा जी, इज इट कंसिडर्ड तोहमत व्हेन रिलेटिव मेक्स फॉल्स एक्यूजेशन ऑन देयर अजम्पशंस नॉट नेसेसरीली अबाउट करेक्टर? तोहमत तो ये भी है मगर वो वाली तोहमत नहीं है जैसी कि जो सबा मुबिकात में से है, जो सात हलाक कर देने वाले गुनाहों में से है, मगर तोहमत किसी के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाना बहुतान है, झूठी बात कहना बहुतान है और ये गुनाह है, गुनाह फिर भी है, ठीक है। इसीलिए हमें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए और खुद ही से खुद ही अज्यूम करके जी उसने ऐसे किया होगा, वो ये सोच रही होगी उसने ये इसलिए किया है क्योंकि उसको, तो हमें क्या पता, ये बहुतान है सब। प्लीज मेक स्मॉल तस्कीर अबाउट वाइफ गुड डीड्स अबाउट टूवर्ड्स हस्बैंड विच यू टॉक टूडे। अच्छा ठीक है, एडमिन प्लीज इस चीज को नोट कर लें, उसका क्लिप भी इंशाल्लाह को बना देंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सदा नॉन मुस्लिम इज मैरिड टू अ नॉन मुस्लिम एंड द वाइफ कन्वर्ट्स टू सम, व्हाट शुड शी डू एज हर हस्बैंड इज स्टिल नॉन मुस्लिम? उसको दावा करे, अगर उलमा कुछ एक टाइम पीरियड बताते हैं, अगर उसमें भी वो मुसलमान नहीं होता तो फिर वो उससे अलहदगी ले सकती है, अलहदगी हो जाएगी बल्कि। कैन वी शेयर योर रिकॉर्डिंग एंड अरामा मटीरियल ऑन सोशल मीडिया और इट इज इट हैज कॉपीराइट? नहीं, कॉपीराइट कुछ नहीं है, ये अल्लाह ताला की बातें हैं, आप आगे फैलाएं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सादा जी प्लीज मेक दुआ फॉर माय हस्बैंड, हिज बीन होम विद नो वर्क, आल्सो कैन समवन वर्क वेयर वी हैव टू प्ले बिंगो विद ओल्डर सीनियर्स एंड डेकोरेट इन देयर हॉलीडेज? अल्लाह ताला उनको रिज़्क़े हलाल अता फरमाए, रिज़्क़े हलाल के दरवाजे खोल दे और उनके लिए बेहतरीन मुआश का कुछ इंतजाम कर दे, ऐसे जगहों से बचना ही हमें बेहतरी है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
दिस सेशन इज नो लॉन्गर बीइंग रिकॉर्डेड। म्यूटेड।